बुलाए हुए प्यारे भाई और बहन, हम पहुंच गए हैं क्लास नंबर 22, जिसका नाम है बाइबल के समय की पढ़ाई। बाइबल के समय की पढ़ाई, तो इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि परमेश्वर का मनुष्य के लिए जो क्लॉक है, क्लॉक है ना, तो परमेश्वर का मनुष्य के लिए जो क्लॉक है, ये भी बोल सकते हैं। तो आज हम पढ़ाई करेंगे समय के बारे में, युगों के बारे में, और पढ़ाई करेंगे कि आदम से लेके जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तब से लेके आज तक कितना समय निकल चुका है। क्योंकि साइंस बोलती है कि हजारों लाखों साल हो गए हैं इस धरती पे इंसान को बसते हुए। तो परमेश्वर का वचन यानी कि बाइबल इस बारे में कुछ बात कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमें 2013, ये 2013 चल रहा है ना, 13 तो दिख रहे हैं साफ साफ, लेकिन इससे पहले क्या था, कब आदम को बनाया गया, कब ये सब हुआ, ये सब हम आज परमेश्वर की किताब में ढूंढ ढूंढ कर पढ़ेंगे, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां। तो हम इस पढ़ाई को 7 भाग में बांटेंगे, ठीक है, 7 भाग में बांटेंगे, और एक एक भाग का समय देखेंगे कितना था। तो 7 भाग और 50 वचन, जिससे हम पढ़ाई करेंगे कि आदम से लेके आज तक कितना समय हो गया है। तो पहले हम पहले भाग में देखेंगे कि आदम को जब बनाया तब से बाढ़ तक, यानी कि पहला संसार, ठीक है। तो पहले भाग की पढ़ाई में हम ये देखेंगे। तो ये हम बोल सकते हैं परमेश्वर की युगों की योजना का पहला संसार, ठीक है, जिसको हम कई कई बार क्या होता है, ज्यादातर लोग उत्पत्ति के जो पहले भाग जो पाठ है ना, उसको पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते, छोड़ते, यार क्या लेना देना, ऐसे इग्नोर करके चले जाते हैं। और कई सोचते हैं इनकी क्या जरूरत थी ये लिखने, ये इसका बेटा था, ये इसका बेटा था, उसकी इतनी उम्र हुई, इतनी इसकी उम्र हुई, ये वो सब ऐसे निकल जाते हैं। लेकिन वो बोलते इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर ये अध्याय ना होता, अगर ये सूचना बाइबल में नहीं होती, तो हमें कभी भी समय का नहीं पता चलता। तो अब कैसे वो हम देखेंगे। अभी हमें ऐसे देखना है कि आदम की उम्र कितनी थी, 930 साल।
930 साल।
लेकिन अगर हम आदम की उम्र के 930 के 930 साल ही ले लेंगे तो हम सही कैलकुलेशन पे नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके 930 साल में कितने बच्चे हुए, सेठ हुआ, उसके बाद उसकी कितनी उम्र हुई, उसके बाद सेठ का बेटा हुआ, उसके बाद कितने वंश उसने देखे। तो अगर 930 के 30 ही कैलकुलेट कर उसके ले लेंगे तो कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। तो हमें क्या लेना है, हमें ऐसे चलना है कि आदम की उम्र कब तक लेनी है, जब तक उसका पहला बेटा हुआ यानी सेठ। सेठ की उम्र उतनी लेनी है जब उसका पहला बेटा हुआ, और उसके बेटे की उम्र उतनी लेनी है जब उसका बेटा हुआ। तो ऐसे सही कैलकुलेशन होगी, क्योंकि अगर हम पूरी पूरी दोनों की ले लेंगे तो गलती हो जाएगी ना। 930 साल हमने आदम के ले लिए, और मान लो सेठ की उम्र थी मान लो 600 साल,
आदम को बेटा सेठ हुए
नहीं,
थे।
नूह और वो अबील और वो
देखेंगे देखेंगे। तो ऐसे अगर दोनों की ही उम्र ले लेंगे तो दोनों ही एक समय में जिए, 325 साल की उम्र में आदम को सेठ हुआ था, तो 605 साल सेठ उसके साथ साथ जिया। तो अगर आदम की भी पूरी उम्र ले ली और सेठ की भी पूरी उम्र ले ली, तो तो गलत हो जाएगा ना। तो लेना कब है? आदम से लेके सेत तक आदम की उतनी उम्र लेनी है, उसके बाद सेत के पहले बेटे की उम्र उतनी लेनी है। तो ऐसे हमें सही गिनती सही पता चलेगी। और कब तक चलना है? नूह बाढ़ तक, बाढ़ तक चलना है। तो ये हम अभी पढ़ेंगे, ये बहुत साधारण वो है। तो ये आप बोल रहे थे कि सेठ की उम्र, पढ़ लो जरा उत्पत्ति 5:3। उत्पत्ति 5:3।
जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ।
इसका नाम क्या था?
उसका नाम शेत था।
तो कितने वर्ष का हुआ आदम?
आदम 130।
130, मेरी गलती, माफ कीजिए, गलती कीजिए, मैंने वहां पे 325 बोला, 130। तो 130 साल की उम्र हम लेंगे आदम की, तब तक सेत तक। तो इसका मतलब क्या हुआ? आदम की बनावट को लेके 130 साल हुए थे जब उसका पहला बेटा पैदा हुआ, तो 130 एक हो गए, इसके 130 उठाए। अभी सेत 6 में पढ़ो, सेत 6।
जब सेत 105 वर्ष का हुआ,
तो सेत के उठाए 105, जब उसका बेटा कौन पैदा हुआ? इनोश, इनोश पैदा हो गया। तो 130 एक उठे और 105 एक उठे, ठीक है। उसके बाद इनोश 9वें वचन में पढ़ लो,
जब इनोश 90 वर्ष का हुआ तब उससे केनान का जन्म हुआ।
तो 90 90 इसके उठ गए, सही ना? तो ऐसे कैलकुलेशन जाएगी, 90 इसके उठे तो केनान पैदा हुआ। और 12 में पढ़ लो, केनान 70 का था,
जब केनान 70 वर्ष का हुआ तब उससे मेलेल का जन्म हुआ।
तो 130 और 105 और 90 और 7, ठीक है, 70 सॉरी। उसके बाद 15 में पढ़ लो, मेलहेल 65 का हुआ,
जब मेलहेल 65 वर्ष का हुआ तब उससे यरद का जन्म हुआ।
तो यरद पैदा हुआ, 65 ये हो गए, आगे यरद 18 में,
18 में
हाँ,
जब यरद 162 वर्ष का हुआ तब उसके हनोक का जन्म हुआ।
तो 162 वर्ष यरद के लेंगे, क्योंकि यरद से अनूप पैदा हो रहा है। तो उसके बाद अनूप 65 इसके लिए, तो मथुसेला पैदा हो गया। और आगे 25 में मथुसेला,
25 में
मथुसेला 187 वर्ष का था,
जब मथुसेला 187 वर्ष का हुआ
तो लेमेक पैदा हुआ,
लेमेक का जन्म हुआ।
और
जन्म के पश्चात मथुसेला 782 वर्ष,
जी हाँ। तो उसके बाद 28 में पढ़ लो, लेमेक,
लेमेक 182 वर्ष का हुआ,
तो कौन पैदा हुआ?
और उससे एक पुत्र का जन्म हुआ
जिसका नाम नूहा था।
हाँ, तो उससे एक पुत्र का जन्म हुआ, उसने ये कहकर उसका नाम नूह रखा।
तो ये नूह जो लेमेक का पुत्र था, आदम की 9वीं पीढ़ी थी नूहा, ठीक है। और ये यहाँ तक, नूहा तक हमें साफ साफ पता चल रहा है, 130, 105, 90, 70, 65, 162, 65, 187, 182। अब बाढ़ का भाई, जब नूहा कितने समय का था? 7:11 पढ़ लो, 7:07।
जब नूह की आयु 600 वर्ष की, दूसरे महीने का 7वां दिन आया,
तो 600 वर्ष,
17वां,
तो 600 वर्ष, ठीक है, 600 वर्ष नूह के लिए, तब क्या आ गई? बाढ़ आ गई। तो पहला संसार की गिनती कैलकुलेट हो जाएगी, सबको जोड़ लो, सबको जोड़ लो, आदम से लेके नूहा जब 600 साल का था तो बाढ़ आ गई, सही है। तो इन सबको जोड़ लो, गिनती क्या आएगी? 1656 साल, 1656 साल आ जाएगी। तो पहले संसार का समय था 1656, समझ आया या नहीं आया? ठीक है, क्योंकि हमें सारी उम्र नहीं उठानी है आदम की। अगर सारी उम्र उठा लेंगे ऐसे तो कितने साल बन जाएंगे, क्योंकि उसी समय फिर उसके बाकी बच्चे भी तो जी रहे थे ना, तो कहाँ पे छोड़ेंगे आके? नूहा कब मरा और उस वक्त कौन जिया ये वो, तो सिर्फ उतनी लेनी है नूहा से उसके पहले पुत्र तक, उसके पहले पुत्र की उसके पहले पुत्र तक, उसके पहले पुत्र की उसके पहले, ऐसे नूहा तक जाएंगे। और नूहा तक जाने के बाद हम देख लेंगे कि जब नूहा पैदा हुआ उसके 600 साल बाद क्या हुआ, बाढ़ आई। 600 साल का था जब नूहा बाढ़ आई, तो साफ साफ ये डेट कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये था आदम से लेके नूहा तक, यानी पहले संसार की आयु 1656 साल। ठीक है, तो पहले भाग की पढ़ाई में हमें कितने साल मिले? 1656 साल। ठीक है, यानी पहला संसार। अब उसके आगे चलना है बाढ़ से लेके, ये सब जुड़े हुए हैं, बाढ़ आने से लेके वायदे तक कितना समय था। अभी ये कौन सा वायदा ये हमें देखना है, क्या ये वो वायदा जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ मोरिया पहाड़ पे किया जब वो इसहाक को बलिदान देने जा रहा था, या इससे पहले भी कोई वायदा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ किया था? इससे पहले भी किया था ना मोरिया पहाड़ से, वो पढ़ लो। हाँ, उत्पत्ति 12:1-3
1:3 हाँ। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा।
तो ये परमेश्वर का वायदा था अब्राहम को, अब्राहम अपनी जमीन छोड़ और जहां मैं तुम्हें बोल रहा हूँ वहां चला जा। तो ये थी वो डेट जहां परमेश्वर ने अब्राहम को क्या दिया, वायदा दिया। अभी यहां तक देखना है ये कब मिला था इसको। उत्पत्ति 12:4 पढ़ लो।
और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय 75 वर्ष का।
कितने साल का था?
75 वर्ष।
तो ये नोट करना, 75 साल। 75 साल की आयु थी किसकी? अब्राहम की, जब वो उस देश को छोड़ के निकला। अभी ये कब हुआ? प्रेरितों के काम 7:4 में देख लो। प्रेरितों के काम
7:4 के देश से निकलकर हारान में जा बसा। उसके पिता की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसको वहां से इस देश में लाकर बताया।
तो मृत्यु के बाद, पिता की मृत्यु के बाद ही इब्राहिम क्या हुआ, इधर आया दूसरी जगह। ठीक है, तो अभी हमें इब्राहिम के पिता की आयु मरते वक्त कितनी थी देखनी है।
अच्छा,
ठीक है, क्योंकि उसके बाद ही परमेश्वर उसको ला रहा है ना। तो ये अभी पढ़ते हैं कि बाढ़ के बाद, अब बाढ़ के बाद का समय देखना है। जब ये उत्पत्ति 11:10 में पढ़ो।
शेम की वंशावली यह है, जलकुंडली के दो वर्ष।
हाँ, तो ये दो नोट कर लो। जल प्रलय के 2 साल बाद शेम के पुत्र हो रहा है अर्फक्षद, अर्फक्षद सही ना।
शेम के 100 वर्ष का, शेम 100 वर्ष का हुआ तब उससे अर्फक्षद।
हाँ तो हमें मेन चीज रखनी है बाढ़ के बाद, क्योंकि बाढ़ के बाद जाना है ना हमें। बाढ़ तक तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अभी बाढ़ के बाद 2 साल बाद बाढ़ के कौन उसका पैदा हो रहा है, एक अर्फक्षद बेटा पैदा हो रहा है। अभी आगे पढ़ो 12 में अर्फक्षद, सो 2 मिल गए इसमें। आगे अर्फक्षद कितने का था पढ़ो, 12 में।
जब अर्फक्षद 35 वर्ष का हुआ,
तो 35 इसके ले लो, तो कौन पैदा हुआ, शैलय पैदा हुआ, ठीक है। तो 35 ये आ गए। उसके बाद 14 में पढ़ लो शैलय,
जब शैलय 30 वर्ष का हुआ,
तो 30 ये ले लो तो अबेर पैदा हुआ, अबेर। अभी 16 में पढ़ लो,
और जब अबेर 24 वर्ष का हुआ,
34 का हुआ तो पैलेग पैदा हुआ,
पैलेग का जन्म
हुआ, तो 34 ये ले लो पैलेग। ऐसे नूहा के बाप तक जाएंगे 13 तक, ठीक है। तो पैलेग 18 में पढ़ लो कितने का, तो कौन पैदा हुआ,
जब पहले 30 वर्ष का हुआ तो उसके द्वारा रू का जन्म हुआ,
उसके द्वारा कौन, रू,
रू
का। तो 12 में रू कितने वर्ष का, 32 वर्ष का हुआ। 20 में पढ़ लो,
जब रू 32 वर्ष का हुआ
तो 32 ये ले लो सरूग पैदा हुआ। आगे 22 पढ़ लो,
जब सरूग 30 वर्ष का हुआ
तो नाहोर पैदा हुआ। नाहोर पता कौन था, इब्राहिम का दादा, ठीक है। 30 ये ले लो। अभी नाहोर 24 में पढ़ लो,
24 जब नाहोर 29 वर्ष का हुआ
तो 13 पैदा हुआ। 13 कौन था, इसका बाप। अभी 13 की मरते वक्त उम्र कितनी थी ये भी देख लो, 32 में पढ़ लो उत्पत्ति 11 में।
हाँ, जब 13 200 वर्ष का हुआ,
205
देश में मर गया,
205 है जी, 205। तो 13 की उम्र मरते वक्त कितनी थी, 205। तो इस तरीके से दूसरे बाग की पढ़ाई में हमें मिल जाएगी कि साल के बाढ़ के बाद 13 की मृत्यु तक, यानी मृत्यु के बाद कौन जा रहा है, इब्राहिम वो जगह छोड़ के जा रहा है, ठीक है। तो 2, 35, 30, 34, 34 ये सब मिला के पता क्या मिलता है, 427 वर्ष। अभी दूसरा संसार में चल रहे हैं हम, ये था बाढ़ से लेके वो वायदे तक जो परमेश्वर ने इब्राहिम से दिया,
अच्छा।
कि अपनी जगह छोड़, और वो हमें पता है वो 13 की मृत्यु के बाद हो रहा है।
हाँ,
तो 1602 भाग की पढ़ाई में हमें, हमने बोला ना 7 हिस्सों में बांटना है, तो 2 भाग की पढ़ाई में मिल गया 1656 साल, यानी हमें पता चल गया अभी पहले संसार की उम्र 1656 साल थी, और उसके बाद बाढ़ के बाद जो वायदा किया इब्राहिम के साथ के अपनी जमीन छोड़, 427 साल, ठीक है, 427 साल उसके बाद। आगे चलते हैं अभी तीसरे भाग की पढ़ाई, वायदे मिलने के बाद से लेके व्यवस्था मिलने तक। व्यवस्था कौन सी,
10 हुक्म दिए थे।
बहुत से लोग सोचते हैं कि जो 10 हुक्म मिले थे, लेकिन सबसे पहली व्यवस्था कौन सी थी परमेश्वर ने, आपको पता है, जो दी इसको इज़राइल को, सबसे पहला कानून या व्यवस्था जो परमेश्वर ने इज़राइल को दी थी वो कौन सी थी, नहीं, सबसे पहली व्यवस्था इज़राइल को जो मिस्र में मिली थी जब वो छोड़ के जा रहे थे, ये पढ़ लो निर्गमन 12 का 41 से लेके 43 तक, 12 का 41 से 43 तक। हाँ जी,
और 430 वर्षों के बीतने पर,
कितने,
430
30 वर्ष के बीतने पर
ठीक उसी दिन
हाँ
की सारी सेना
मिस्र से
निकल गई।
हाँ,
यहोवा इसराइलियों को मिस्र देश से निकाल कर लाया, इस कारण वह रात उसके निमित्त मानने के योग्य है। यह यहोवा की वही रात है जिसका पीढ़ी पीढ़ी में मानना इसराइलियों के लिए आवश्यक है। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, पर्व की विधि यह है, कोई परदेशी उसमें से ना खाए।
तो ये पसा का कानून था, पसा ये क्या बोला,
पर्व।
हाँ।
तो ये पसा है जिसमें क्या करना था, एक लेला लेना था, उसको बलिदान करके और रोस्टेड करके खाना था। ये मैं बताऊंगा ये क्या था पसा। तो ये था सबसे पहला कानून परमेश्वर ने इसराइल को दिया जब उनको मिस्र से निकाल के लेके आया। बोलता ये पसा की विधि है और तुम्हें हमेशा ये माननी है क्योंकि मैंने तुम्हें इसराइल की गुलामी से छुड़ाया था। तो ये था पहला कानून, पहली विधि, पहला कानून। तो ये कब मिला था, 430 वर्ष बीतने पर। कितने,
430
वर्ष। तो तीसरे भाग की पढ़ाई में हमें क्या मिलता है, 430 वर्ष। तो कितने हो गए, 1656 एक में मिल गए, 427 एक में मिल गए और 430 एक में मिल गए। ये बात पढ़ लो गलातियां 3:17 में भी।
पर मैं ये कहता हूँ, जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी उसकी उसको व्यवस्था उसकी व्यवस्था 430 वर्ष के बाद आकर नहीं टाल सकती।
तो 430 वर्ष तक, मतलब वायदे से लेके और वो जो पहला कानून मिला, समय कितना था, 430 वर्ष। तो तीन भाग में मिल गए हमें, 1656, 427 और 430। ठीक है, उसके बाद चौथा भाग, चौथा भाग ये व्यवस्था मिलने से लेके जमीन के बंटवारे तक वो कितना समय था। तो उसके लिए आपको मैं बताऊंगा। आपको अगर याद हो कि जब ये मिस्र से निकले गुलामी से तो कितने साल भटकते रहे थे,
40 साल भटके थे जंगलों में।
तो इसको हम तीन भाग में बांटेंगे। एक तो ये कि उनको पहाड़ तक कितना समय लगा, वो पहुंचने तक, पहाड़ तक पहुंचने तक कितना समय लगा, पहाड़ के इर्द गिर्द कितनी देर घूमते रहे और उसके बाद बंटवारा कब हुआ, तो ये हम पढ़ेंगे, देख लेंगे। जब ये मिस्र से, पढ़ लो गिनती 33:3, गिनती 33:3, एक साल लगा था इनको पहाड़ तक पहुंचने के लिए।
गिनती 33:3
जी।
पहले महीने के 15वें दिन को उन्होंने रामसेस से कूच किया।
रामसेस से निकले पहले महीने के 15वें दिन।
हाँ। फसा के दूसरे दिन इजरायली सब मिस्रियों के देखते बेखट के निकल गए।
तो उसके बाद 10:11 से लेके 13 पढ़ लो। नहीं हाँ, गिनती का ही 10,
गिनती का 10 का
11 से 13 तक।
वे उसे दूसरे महीने के 14वें दिन को गोद धुली के समय मनाए और
नहीं, क्या लिखा है, क्या लिखा,
गोद धुली 10:11 है ना।
हाँ,
गोद धुली के समय मनाए और पसे के बलि पशु के,
देखो ये 10:11 है ना।
हाँ।
दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के,
दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के 14वें 20वें दिन
के को बदले साक्षी के निवास पर विषय उठ गया।
हाँ,
तब इजरायली सीने के जंगल से प्रस्थान करके निकले
हाँ।
और बादल परान नामक जंगल में ठहर गया
हाँ।
उनका प्रस्थान यहोवा की उस
सिनाई
के अनुसार
सिनाई पहाड़ हाँ।
जो उसने मूसा को दी थी आरंभ हुआ।
तो एक साल लगा इनको कहाँ तक पहुँचने के लिए, सिनाई के पहाड़ तक पहुँचने के लिए, ठीक है, एक साल लगा वो। और 14 का 33 में पढ़ लो, वो बोला 40 साल, अभी 40 साल में से 39 रह गए, क्योंकि एक साल तो पहाड़ तक पहुंचने के लिए लगा और 39 साल क्या हुए, ढूंढते रहे। 14 का 33, 40 लिखा ना वहाँ पे 40, तो 40 में से एक कम कर लो ना, वो जो एक साल लगा उनको पहाड़ तक पहुंचने के लिए,
14 का
33।
और जब तक तुम्हारे सब जंगल में न गल जाएं तब तक, अर्थात 40 वर्ष तक, तुम्हारे बाल बच्चे जंगल में तुम्हारे भ्रचार का फल भोगते हुए चरवाही करते रहेंगे।
देखो 40 वर्ष में से अभी 39 रह गए ना, एक जमा 39, 40, एक साल तो वो जो उनको भटकते भटकते पहुंचे से नाई पहाड़, तो 39 साल घूमते रहे, तो टोटल हो गए 40, ठीक है। हमें पहुंचना है कब तक, बंटवारे तक। तो बंटवारा कब हुआ, जोशुआ 14 का 7 और 10 पढ़ लो, सात और दस।
जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश बर्ने से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया।
तो 40 वर्ष का था, आगे 10 में पढ़ लो।
और अब देख, जब यहोवा ने मूसा से ये वचन कहा था, तब से 45 वर्ष हो चुके हैं जिनमें इजरायली जंगल में घूमते फिरते रहे, उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा और अब मैं 85 वर्ष का हूँ।
तो 45 बोला, 45 साल वो क्या हुआ, हो गए हैं। तो 45 में से अभी क्या बोलते हैं, 40 में देखा हमने एक जमा 39, तो 39 में से कितने और जोड़ने, 39 में कितने और जोड़ने, तो 45 बनेंगे
6,
तो 6 ये तो टोटल हो गया 46, एक जमा 39 जमा 6, ठीक है, 46। तो चौथे भाग की पढ़ाई में हमें मिलता है व्यवस्था मिलने से जमीन के बंटवारे तक का समय कितना, 40 साल है। तो चार भाग हो गए, पहले में 1656, दूसरे में 427, तीसरे में 430, चौथे में 46। पांचवा समय है जमीन के बंटवारे के बाद, समय आया न्यायियों का। तो पहला न्यायी पता कौन था, न्यायी पहला न्यायी जोशुआ, पढ़ लो गिनती 27 का 22 और 23। एक तरह का परमेश्वर ने इज़राइल को जज दे दिए, न्यायी दे दिए,
27 का
22 और 23। और अंतिम न्यायी पता कौन था, बता सकते हो,
अंतिम न्याय तो वो था पौलुस, पौलुस ही तो फिर लास्ट में सभी को
है? अंतिम न्याय था सैमुअल, पढ़ो पढ़ो पढ़ो
23। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने यहोशू को लेकर एलियाजर याजक और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उस पर हाथ रखे और उसको आज्ञा दी जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था।
तो यहोशुआ को पहला न्यायी बनाया कि ये न्याय करेगा तुम्हारा, और एक तरह का लीडर, और अंतिम न्यायी था सैमुअल।
उसके बाद कोई नहीं हुआ,
ये न्यायियों का समय था, न्यायियों का, उसके बाद राजाओं का समय आएगा, ठीक है। तो पांचवें बात की पढ़ाई में हमें देखना है कि ये न्यायियों का समय कितनी देर तक रहा, न्यायी कितनी देर तक रहे। प्रेरितों के काम 13:20 में पढ़ लो ये बात।
हम बोल सकते हैं ना जैसे यहोशू से लेकर समुएल तक कितना समय रहा न्यायी।
हाँ।
प्रेरितों के काम
13:20
के बाद उसने शमूएल बरशोता तब उसने न्याय ठहराए।
न्याय
ठहराए।
देखो शमूएल तक क्या ठहराए,
न्याय।
ठीक है, कितना समय, कितना समय, 450 वर्ष। कितना समय, 450 वर्ष। तो ये 450 वर्ष का समय था न्यायी ठहराने का। तो न्यायियों का समय कितना है, 450 साल। 450 साल, क्योंकि उसके बाद राजाओं का समय शुरू हो जाता है और राजा सौल के 40 वर्ष होने तक, उसके बाद शमूएल मर जाता है। तो अंतिम न्यायी था शमूएल, लेकिन शमूएल अपने जीवन काल के समय में ही न्यायी राजा स्थापित करता है। तो इसका मतलब न्यायियों का समय खत्म हुआ, राजा का समय शुरू हुआ। हाँ, तो पांचवा जो भाग है, पांचवे भाग में हमें मिलते हैं 450 साल, सही ना, न्यायियों का समय। उसके बाद न्यायियों के बाद शुरू होता है किनका समय, राजाओं का समय। किनका समय, तो राजाओं के समय को छेवे भाग में कैलकुलेट करेंगे। तो ये पांच भाग तक हो गया, ठीक है, समझ आ गया। छेवे भाग में हम पढ़ेंगे राजाओं का समय। तो पहला राजा था साउल और अंतिम राजा था जदकिया। साउल पहला राजा और अंतिम राजा जदकिया, ठीक है। तो इसके लिए लिस्ट है, ये है लिस्ट राजाओं की। पहला है साउल। तो साउल ने कितने साल राज किया, प्रेरितों के काम 13:21 में पढ़ लो।
13:21
जी।
इसके बाद उन्होंने एक राजा मांगा, तब परमेश्वर ने 40 वर्ष के लिए बिन्यामीन के गोत्र में से एक मनुष्य अर्थात कीश के पुत्र शाऊल को उन पर राजा बनाया।
तो 40 वर्ष राज किया किसने,
शाऊल
ने। शाऊल के बाद कौन आया, दाऊद। पहला इतिहास 29:27, 40 वर्ष ही दाऊद ने राज्य किया।
पहला इतिहास
29:27,
पहला इतिहास 29:27, पहला इतिहास आदि से अंत तक राजा दाऊद के सब कामों का वृत्तांत। भाई ये 29 और आगे लिए 27 से 29 तक,
नहीं 29:27 करो।
ओके, इसके उसके इज़राइल पर राज करने का समय 40 वर्ष का था।
तो दाऊद ने भी कितने साल राज किया, 40 वर्ष साउल ने, 40 वर्ष दाऊद ने। उसके बाद सुलेमान ने कितना किया, दूसरा इतिहास 9:30 में चले जाओ।
दूसरा इतिहास
9:30
सुलेमान ने यरूशलेम में सारे इज़राइल पर 40 वर्ष तक राज किया।
तो तीनों 40, साउल, दाऊद और सुलेमान। सुलेमान की मृत्यु के बाद इज़राइल के दो बंटवारे हो गए, एक तो इज़राइल 10 जातियों वाला और एक यहूदा 2 जातियों वाला, ठीक है। 9:30 तो सुलेमान की मृत्यु के बाद इज़राइल के दो बंटवारे हो गए, एक तो इज़राइल और एक तो यहूदा, एक तो 10 जातियां, एक तो 2 जातियां। ठीक है, उसके बाद जो राजा आए, दूसरा इतिहास 12:13 में देख लो, रहोबम।
दूसरा इतिहास 12:13। अतः राजा रहुब्याम यरूशलेम में दृढ़ होकर राज करता रहा। जब रहुब्याम राज करने लगा तब 41 वर्ष की आयु का था, और यरूशलेम में अर्थात उस नगर में जिसे यहोवा ने अपना नाम बनाए रखने के लिए इज़राइल के सारे गोत्रों में से चुन लिया था, 17 वर्ष तक राज करता रहा।
तो 40, 40, 40 और 17। उसके बाद उसके रहबोम के बाद कौन राजा आया, 13:2 में पढ़ लो।
वह 3 वर्ष तक यरूशलेम में राज करता रहा।
तो अबीजा ने 3 वर्ष तक राज्य किया, 3 इसके हो गए। उसके बाद 16:13, दूसरा इतिहास 16:13 में पढ़ लो, असा। असा ने कितनी देर राज्य किया?
16:13। अंत में आसा अपने राज्य के 41वें वर्ष में मर गए अपने पुरखाओं के साथ।
तो राज्य में राज्य कितने किया? 41 वर्ष। तो ऐसे ही हम चलते जाएं तो एक एक राजा करके एंड वाले राज्य तक पहुंचेंगे। एंड वाला राजा वो मिल जाएंगे हमें, पहला राजा और दूसरे राजा में सारे डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। तो एंड वाला राजा था राजा जदकिया, जो गिरा उसने कितना राज्य किया? दूसरा राजा 24:18। जी।
तब वे अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा का भवन छोड़कर अशेरों और मूर्तों की उपासना करने लगे, अतः उनके ऐसे दोषी होने के कारण परमेश्वर का क्रोध यहूदा और यरूशलेम पर भड़का।
यदि क्या 24:18
नहीं, ये दूसरा इतिहास 24 का ना?
नहीं, दूसरा राजा
सॉरी मैं तो इतिहास में पढ़ रहा हूँ, दूसरा राजा
24:18।
ठीक है, 24:18। तब सिदकिया राज करने लगा, तब वह 21 वर्ष का था और यरूशलेम में 11 वर्ष तक राज करता रहा।
तो ये अंतिम राजा जदकिया ने 11 साल राज्य किया, इसके साथ राजाओं का समय खत्म हुआ। तो 513 वर्ष मिलते हैं हमें छठे भाग की पढ़ाई में राजाओं का राज्य, जो साउल से शुरू होता है और जदकिया तक चलता है 513 वर्ष, ठीक है। तो छठे भाग की पढ़ाई में मिलते हैं हमें 513 वर्ष, और अब पहुंच गए 7वें और अंतिम भाग में, राजाओं के खत्म होने के बाद से लेके और 1 ईस्वी तक प्रभु यानी कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म तक बोल लो, ठीक है। तो इसमें नहीं है, तो ये कितना समय था? ये दूसरा इतिहास 36:20 से 21
21, 22, 23
बोलो।
36 है ना दूसरा अध्याय 36:20 से पढ़ू ना?
हाँ जी,
36:20 से। अच्छा, जो तलवार से बच गए उन्हें वह बेबीलोन को ले गया, और फारस के राजा के प्रबल होने तक वे उसके और उसके बेटों पोतों के अधीन रहे।
तो ये कितना समय था? 70 वर्ष 21वें वर्ष, क्योंकि अगर आपको पता हो जब अंतिम राजा गिरा, अंतिम राजा को गिराने वाला कौन था? बाबुल का राजा। बाबुल के गुलामी की फिर इजराइल ने 70 वर्ष, इसी में 21वें पता चल रहा है।
यह सब इसलिए हुआ कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो, कि देश अपने विश्राम काल में सुख भोगता रहे, इसलिए जब तक वह सूना पड़ा रहा तब तक तथा 70 वर्ष के पूरे होने तक उसको विश्राम मिला।
तो 70 वर्ष की गुलामी, उसके बाद एक राजा, 22 में पढ़ो, वो कौन था राजा?
एक राजा
नहीं, इसी में इसी चैप्टर में, अभी यहाँ पे जो आप पढ़ रहे हो ना, उसी का 22 वचन पढ़ो।
फारस के राजा कुसरू।
ये फारस का राजा साइरस कुसरू, ये इसके प्रबल होने तक पकड़ो, पढ़ो।
कुसरू के पहले वर्ष में यहोवा ने उसको उसके मन को उभारा कि जो वचन यर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो, इसलिए इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और इसे अजय की चिट्ठी लिखवाई।
तो ये कब हुआ? ये बहुत बढ़िया तरीके से इतिहास में लिखा हुआ है, 536 BC में। 536 BC में ये राजा जो साइरस राजा था ना, ये सर क्या कुसरू राजा, हाँ, ये इसने राज्य शुरू किया था। तो इसमें हमें पता चल रहा है कि 70 प्लस कब इसने राज्य शुरू किया था, 536, तो टोटल मिला के 606, टोटल मिला के कितना,
606।
तो सातवें भाग की पढ़ाई यानी कि 1 AD तक, 1 ईस्वी तक, 606। तो अंतिम भाग की पढ़ाई में मिलता है 606, 536 जमा 70 साल की गुलामी प्लस उसके बाद जब वो पारस का राजा स्थापित नहीं होता 536, तो दोनों को मिला के 606। तो ये सात भाग की पढ़ाई में जो हमें समय मिला 1 ईस्वी तक, वो था 1656, 427, 430, 46, 450, 513 और अंतिम 606। तो इन सबको टोटल लगा लो तो मिल जाता है आपको 4128। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, प्रभु यीशु मसीह से पहले का समय है 4128 वर्ष
पहले, आए नहीं थे उससे पहले का,
उससे पहले, और 2013 अब। तो इन टोटल मिला के देख लो 6100 कुछ वर्ष का समय हुआ है आदम से लेके आज तक, एग्जैक्ट जो सही समय है इसके बारे में बाइबल हमें थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ करके ध्यान बता रही है। तो ये ऐसे है, AD आगे को चलता है और BC पीछे को चलता है, 1 2 3 4 5 इधर को, 1 2 3 4 इधर को। तो ऐसे ही है, अगर परमेश्वर की किताब में से ढूंढ के पढ़ें तो सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं जिसका उत्तर बाइबल ना देगी, क्योंकि ये परमेश्वर का वायदा है। यशाया 34:16,
यहोवा की पुस्तक से ढूंढकर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरे हुए ना रहेगी, कोई बिना जोड़ा ना रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है।
तो परमेश्वर के वचन से आज हमें समय की पढ़ाई यानी परमेश्वर का क्लॉक हमें प्राप्त होता है, हमें पता चलता है आदम से लेके आज तक कितना समय हो चुका है, ठीक है, 4128 मसीह से पहले और 2013 मसीह के बाद। तो ये है समय, ये है वो चार्ट जिसके जरिए से हम कैलकुलेशन करते हैं कि आदम की 130 लेनी है, 105 लेनी है, 90 लेनी है, 70 लेनी है, ऐसे। तो ऐसे पता चल जाता है, पहले वर्ष की कैलकुलेशन पता चल जाती है बाद तक, और उसके बाद वो जो एक साल पहाड़ी तक पहुंचने में लगा, 39 साल घूमते रहे और 6 साल के बाद बंटवारा। तो ऐसे हमारी ये अपनी समय की पढ़ाई का विषय ख़त्म होता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और हम ये विश्वास करते हैं क्योंकि तेरा वचन ही सत्य है। तो इसी के साथ आज का विषय समाप्त होता है। परमेश्वर ही हम सबको आशीष करे। आमीन।